रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 6 राजनीतिक दलों से निर्वाचित सभी 110 उम्मीदवारों की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। निर्वाचित उम्मीदवारों को इसी चैत 5 कते को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। काठमांडू घाटी समेत देश के विभिन्न स्थानों में तेज हवा और थंडर के साथ हुई बारिश। हिमालयी क्षेत्र में हुई बर्फबारी। 1,16,00,000 नकद सहित 2 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भारतीय राज्य उड़ीसा में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 6 राजनीतिक दलों की ओर से निर्वाचित सभी 110 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दलों को प्राप्त सीटों के अनुसार क्लस्टर के आधार पर पेश किए गए उम्मीदवारों को आयोग ने आज निर्वाचित घोषित किया। ये जानकारी समानुपातिक प्रणाली के निर्वाचन अधिकृत एवं आयोग के सचिव कृष्ण बहादुर राउत ने दी। बता दें कि निर्वाचित समानुपातिक उम्मीदवारों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 57, नेपाली कांग्रेस के 20, नेकपा एमाले के 16, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 9 और श्रम संस्कृति पार्टी व राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 4-4 उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग के मुताबिक 6 दलों से निर्वाचित कुल 110 उम्मीदवारों में 82 महिला उम्मीदवार हैं। दलों ने कल ही अपने उम्मीदवारों के नाम आयोग में पेश किए थे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन कार्यालय में आज प्रधानमंत्री कार्की ने सुशासन प्रवर्धन के लिए शुरू किए गए सेवा प्रवाह के मॉडल पास सहित समग्र प्रणाली और कार्यालय व्यवस्थापन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गृहमंत्री ओम प्रकाश अरियाल लगायत पदाधिकारी भी सहभागी थे। नेपाल में पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव से काठमांडू घाटी समेत देश के विभिन्न भागों में तेज हवा मेघ गर्जन सहित बारिश हुई। वहीं हिमालयी क्षेत्र में हिमपात हुआ है। काठमांडू घाटी में तेज हवा और थंडर के साथ हुई बारिश की ओर आगाह करते हुए जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने सभी से सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। कोशी गंडकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेशों के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हुई है। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक कल मंगलवार को कोशी बागमती और गंडकी के एक दो स्थानों और परसों बुधवार को कोशी गंडकी कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों के हिमालयी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में बारिश और हिमपात की संभावना है। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव के कारण मुस्तांग में इस साल 4थी बार हिमपात हुआ है। जिले की सभी 5 गांव पालिकाओं में हुए सामान्य हिमपात को लेकर कृषि और पशुपालन में सक्रिय किसान काफी खुश हुए हैं। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल से नेपाल के लिए चीनी राजदूत जांग माओमिंग ने शिष्टाचार भेंट की। राजदूत जांग ने आज सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष दाहाल के कार्यकक्ष में शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान दो देशों के बीच के संबंध, संसदीय सहकार्य, आपसी सहयोग और समसामयिक विषयों में बातचीत हुई थी। नेपाल पुलिस ने 1,16,00,000 रूपये नकद के साथ 2 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू की टीम ने काठमांडू की नागार्जुन नगरपालिका 8 भीमढुंगा से हवाला की रकम सहित नागार्जुन नगरपालिका 8 भीमढुंगा के 28 वर्षीय सागर गिरी और उसी स्थान के 28 वर्षीय प्रमोद प्रसाद धीदाल को गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया। परिसर के प्रवक्ता और एसपी पवन कुमार भट्टराय ने बताया कि अवैध वित्तीय कारोबार की सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के पास से 3 चेकबुक, विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर काटे गए 27,30,000 रूपये के चेक, विभिन्न बैंकों के 4 एटीएम कार्ड, एक नागरिकता प्रमाण पत्र, 2 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन सहित 3 वाहन पंजीकरण पुस्तिकाएं बरामद की गईं। इसी तरह विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल फोन, एनसेल और एनटीसी के 31 सिम कार्ड और एक कम्प्यूटर भी बरामद किया गया है। प्रवक्ता भट्टराय ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों को काठमांडू जिला अदालत से 5 दिन की म्याद लेकर आगे की जांच की जा रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते। आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहा नै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिकार खेलने के उद्देश्य से बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज की ओर गए सुरखेत की बाराहताल गांव पालिका एक जामिरे के 5 और लेक बेंसी नगर पालिका 8 गंगटे के 1 व्यक्ति सहित कुल 6 लोग 9 दिनों से संपर्क विहीन हैं। शिकार के लिए जाने वालों में जामिरे के 25 वर्षीय रेशम समसेली, 30 वर्षीय सुनील समसेली, 33 वर्षीय टोप बहादुर खत्री, 41 वर्षीय रविलाल दमाई, 34 वर्षीय राम बहादुर गर्ती और गंगटे के निवासी और हाल में बर्दिया में रह रहे 45 वर्षीय दुर्गा बहादुर सिंजाली शामिल हैं। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय सुरखेत के सूचना अधिकारी एवं डीएसपी मोहन जंग बूढ़ा थापा ने दी। उनके अनुसार ये लोग फागुन 23 गते शिकार खेलने के लिए घर से लगभग 17 किलोमीटर दक्षिण में स्थित निकुंज की ओर गए थे। उनके साथ गए लोगों में से टोप बहादुर खत्री की मृत्यु होने की जानकारी मृतक के बहनोई आसे महतारा ने दी है। घटना की सत्यता पता करने के लिए एएसआई टोपेंद्र सिंह ठकुरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन कर रही है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष आम के उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के सभी 8 जिलों के खेतों और बागानों में लगाए गए आम के पेड़ों पर अत्यधिक मंजरियां यानी फूल लगे हैं। चैत वैशाख के दौरान चलने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि और मधुआ रोग का असर न पड़े तो इस साल मध्येश में आम का उत्पादन उल्लेखनीय होने की संभावना है। मध्येश प्रदेश के कृषि विकास निदेशालय के वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकारी प्रदीप कुमार यादव के अनुसार 8 जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 60% से अधिक आम का उत्पादन होने की संभावना है। इस साल मध्येश के किसानों ने करीब 30,800 हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की है। मौसम अनुकूल रहा तो प्रदेश में 4,00,000 मीट्रिक टन से अधिक आम का उत्पादन हो सकता है। मध्येश के जिलों में धनुषा, महोत्तरी, सिरहा और सप्तरी आम उत्पादन के हिसाब से अग्रणी माने जाते हैं। व्यावसायिक रूप से आम की खेती का विस्तार हो रहा है और ये प्रदेश देश के कुल आम उत्पादन का लगभग 76% हिस्सा देता है, ऐसा निदेशालय के आंकड़ों में उल्लेख है। पिछले आर्थिक वर्ष में मध्येश के किसानों ने 30,600 हेक्टेयर में आम की खेती की थी, जिससे प्रदेश में 3,95,962 मीट्रिक टन आम का उत्पादन हुआ था। मध्येश के किसान मुख्य रूप से मालदा, बम्बई, कलकतिया, आम्रपाली, दशहरी, नकुआबा, केरवा, बीजू और सिपिया आदि किस्मों के आम की खेती करते हैं। यहां उत्पादित आम स्थानीय बाजारों के साथ साथ केंद्रीय राजधानी काठमांडू समेत देश के प्रमुख शहरों में भी बेचे जाते हैं। इस वर्ष पेड़ों पर भरपूर आई मंजरियों ने किसानों को उत्साहित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दी। ये घटना आज तड़के 3 बजे की है। घटना के समय ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के 11 सुरक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों ने मरीजों को रेस्क्यू किया। इस दौरान आग और धुएं की वजह से रेस्क्यू करने वाले कर्मचारी भी घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया और मीडिया को बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है। उन्होंने बताया एससीबी मेडिकल कॉलेज से ट्रॉमा केयर सेंटर में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ट्रॉमा से लगे आईसीयू में 23 मरीज भर्ती थे। उन्होंने बताया इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। आईसीयू के मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, जिसके बाद 3 और लोगों की मौत हो गई। सीएम मांझी ने बताया कि इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों के लिए 25,00,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा में मदद नहीं की तो वह शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को टाल सकते हैं। अब इस पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा दो देशों के नेताओं के बीच होने वाली बातचीत बहुत जरूरी होती है और यह चीन अमेरिका रिश्तों को दिशा देती है। दोनों देशों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति की बात पर सवाल पूछे जाने पर लिन जियान ने कहा, हाल की तनातनी ने व्यापार मार्गों को बिगाड़ा है, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने आगे कहा, चीन फिर से सभी पक्षों से अपील करता है कि तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद करें, वो तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर यूरोपीय देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में मदद नहीं करते हैं तो ये नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के तहत 6 राजनीतिक दलों से निर्वाचित सभी 110 उम्मीदवारों की निर्वाचन आयोग ने की घोषणा। निर्वाचित उम्मीदवारों को इसी चैत 5 कृत्य को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। काठमांडू घाटी समेत देश के विभिन्न स्थानों में तेज हवा और थंडर के साथ हुई बारिश, हिमालयी क्षेत्र में हुई बर्फबारी। 1,16,00,000 नकद सहित 2 हवाला कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भारतीय राज्य उड़ीसा में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 10 मरीजों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।